ये आकाशवाणी है। अब आप देवेंद्र त्रिपाठी से समाचार सुनिए। लोकसभा चुनाव में अब एक दौर का मतदान शेष है। सातवें और अंतिम चरण के इस मतदान के लिए प्रचार चरम पर पहुंच गया है। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। सातवें चरण में 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं ने आज अपने अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज मिर्जापुर, मऊ और बांसगांव में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश ने अच्छी नीयत और नीति के कारण तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनाना तय कर लिया है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दूसरे वंचित समूह का आरक्षण धर्म के आधार पर मुसलमानों को नहीं दिया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि योगी सरकार में माफिया के विरूद्व कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ ने पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर और गोरखपुर में जनसभाओं को संबोधित किया। श्री योगी ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि हम श्री मोदी के नेतृत्व में नया भारत देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश विश्व शक्ति बनने की दिशा में बढ़ रहा है और पिछले 10 साल में सीमाएं सुरक्षित की गई हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सलेमपुर और बलिया में कहा कि लोग बेरोजगारी तथा महंगाई से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आज हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन में एक रैली को संबोधित किया और शिमला में प्रचार किया। इस अवसर पर श्री राहुल गांधी ने कहा कि ये चुनाव इतिहास का पहला ऐसा चुनाव है जहां कांग्रेस संविधान की रक्षा के लिए लड़ रही है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में बच्चों के एक अस्पताल में कल भीषण आग लगने से 6 नवजात शिशुओं की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। 12 शिशुओं को बचा लिया गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अस्पताल में हुए अग्निकांड में बच्चों की मृत्यु दिल दहला देने वाली घटना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि वे नवजात बच्चों की मृत्यु पर व्यथित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह घटना हृदय विदारक है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्य सचिव को घटना की जांच कराने का निर्देश दिया है। श्री सक्सेना ने पुलिस आयुक्त से अस्पताल में सभी आवश्यक उपाय करने का भी निर्देश दिया है। श्री सक्सेना ने कहा कि घटना के जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा मिलेगी। उधर गुजरात में राजकोट के टीआरपी गेम जोन में कल शाम लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या 27 हो गई है। राज्य के गृहमंत्री हर्ष सांघवी ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद बताया कि दुर्घटना के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी घटनास्थल का दौरा किया और राहत तथा बचाव कार्यों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने गुजरात और दिल्ली में आग लगने की दुखद घटनाओं में मृतकों के परिवारों के लिए सहायता की घोषणा की है। प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जायेगी। घायलों को 50,000 रूपये दिये जायेंगे। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना तूफान रेमाल पश्चिम बंगाल में सागर द्वीप से लगभग 270 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। 110 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ ये तूफान आधी रात तक बांग्लादेश और इससे सटे पश्चिम बंगाल के तटों को पार करेगा। पश्चिम बंगाल सरकार चक्रवात रेमाल को ध्यान में रखते हुए बड़े पैमाने पर राहत और पुनर्वास कार्य कर रही है। नबन्ना में विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। कोलकाता पुलिस मुख्यालय में भी एकीकृत नियंत्रण कक्ष ने काम करना शुरू कर दिया है। कोलकाता विमानपत्तन के अधिकारियों ने चक्रवात के संभावित प्रभाव को देखते हुए आज दोपहर से 21 घंटों के लिए उड़ानें बंद करने का फैसला किया है। सरकार ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अंतर्राष्ट्रीय फर्जी फोन कॉल रोकने के निर्देश दिए हैं। संचार मंत्रालय ने कहा है कि इन फोन कॉल से साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी की घटनाएं हो रही हैं। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। चेन्नई में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। पीवी सिंधु मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में उपविजेता रहीं। प्रतियोगिता में महिला सिंगल्स के खिताबी मुकाबले में उन्हें चीन की वांग झी ई ने पराजित किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।